राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् परमात्मने नमः।
कि आप जो मान्यता कहते तो मालूम देते ठीक है, लेकिन मान्यता पक होती नहीं। व्यवहारिक मान्यता तो हो जाती है, जैसे स्त्री पुत्र की, माँ की, पत्नी की, ये तो हो जाती है। अरे भगवान का मैं हूँ या ऐसा, ये मान्यता प्राय होती नहीं, तो इसमें क्या हेतु है?
प्रश्न आया है कि जैसे ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मान्यता तो हो जाती है। मैं अभी गोद जाने पर भी ये मेरी माँ, ये मेरे बाप है, अब ऐसे ऐसे धर्म भाई होने पर भी मेरा ऐसा हो जाता है। परंतु भगवान का मैं हूँ ये होता नहीं, क्या बात है इसमें? ये प्रश्न आया, ये ऐसी ममता क्यों नहीं हो जाती, कारण क्या है? तो ये प्रश्न है, कुछ उत्तर सुने ध्यान से, आप मन लगा कर सुना छोड़ा। हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर को अपना मानते हैं, दो बात है। अपने को शरीर मानते हैं और शरीर को अपना मानते हैं, इस वास्ते शरीर को लेकर संबंध तो हो जाता है, परंतु अपने शरीर को अपना नहीं मानते, अपने को शरीर नहीं मानते। अगर ये बात हो जाए तो भगवान अपने ये मानना हो जाए, ख्याल करें। इस पहले फिर कह देता हूँ, फिर शंका करें आप। अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना, इसमें क्या भेद है? ख्याल माया, क्या भेद है? आप बताओगे कोई भेद है? अब बताओ क्या भेद है?
शरीर को अपना मानना
और अपने को शरीर मानना,
अपमानना तो आप मैंपन और शरीर को अपना हुआ ममता।
शरीर को अपना स्वरूप मानना ये अहंता हुई, अपने उसे ही मानना, और शरीर को माना अपना मानना ये ममता हुई। अर्थात शरीर के साथ अभिन्न भाव से एकता मानना मैं हुआ, और भिन्न भाव से अपना मानना ममता हुई। शरीर के संबंध दो तरह का होता है, भेदभाव का संबंध और अभेदभाव का संबंध। गृहस्थी के साथ में अभेद भाव का संबंध होता है, मानो दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है, एक स्त्री एक पुरुष दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है। तो एक ग्रस्त होता है वह अभेद भाव का संबंध है, मानो स्त्री पुरुष दोनों एक हो, अपने है तो भिन्नता, भिन्न होने पर भी अभेद भाव मानते हैं, क्योंकि पत्नी होती है वो अपने आप को पति में मिला देती है, अपना गोत्र छोड़ देती है, पति का गोत्री गोत्र हो जाता है, तो गोत्र हो जाने से वो अभिन्न भाव से हो जाती है, एक हो जाते हैं वो। अगर वो स्त्री न रहे पुरुष हो जाए तो विधुर होता है, और पति चला जाए स्त्री जाए तो विधवा हो जाती है, मानो उसका आधा अंग चला गया आधा गया। तो दोनों मिलकर के अभेद भाव का संबंध होता है, और भाई बंधु बहन भाई में भेदभाव का संबंध होता है, मेरे भाई है मेरे पति है मेरे भाई है मेरी बहन है। तो ये संबंध दो तरह का होता है, एक अभेदभाव का संबंध होता है, एक भेदभाव का संबंध होता है। तो शरीर के साथ में वास्तविक ना भेदभाव का संबंध है ना अभेदभाव का संबंध है, ये संबंध है नहीं, क्यों शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हैं। तो अविनाशी नाशी में ना अहंता होती न ममता होती, अविनाशी की भेदभाव से अविनाशी के साथ ना तो अभेदभाव का संबंध होता ना भेदभाव का संबंध होता, क्योंकि अविनाशी विनाशी ये जाति भी वो है, अलग अलग नित्य एक अनित्य है, एक सत्य है एक असत है, तो उसका संबंध हो नहीं सकता। जो नहीं हो सकता वो संबंध जब अपने माना हुआ है तो शरीर के साथ अपनी एकता मान ली अथवा ममता कर ली शरीर के साथ, इस वास्ते शरीर के साथ कोई संबंध होता है तो अपने को मान लेता है, परंतु शरीर से रहित अपना संबंध भगवान के साथ है वो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि भगवान अपना तो शरीर के साथ संबंध माना है ना जड़ के साथ, जब जड़ के साथ वो संबंध तट हो जाता है, पर चेतन के साथ संबंध नहीं होता, ये कारण है। इसमें शंका हो तो कहेगा फिर भाग्यता है, इसमें कोई शंका हो तो ये कारण पूछा कि क्या कारण है। जैसे विवाह हुआ, विवाह होते ही स्त्री अपनी है और स्त्री मान ले कि अपना पति है, ऐसा तट मान लेते हैं, और भगवान के साथ आप एक और भगवान आपके आप भगवान के, ये बात बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? कि शरीर के साथ आपने तादात्म्य करके और शरीर की मुख्यता आपने मान ली, भगवान का संबंध है तो जीवात्मा का संबंध है, तो जीवात्मा की जगह आपने शरीर को मान लिया तो मैं मर हो गया, और मेरी जगह शरीर को मान लिया तो ये भेदभाव का संबंध मेरा हो गया। तो अब शरीर के साथ संबंध हो उसका संबंध तट मान लेते हो, मगर शरीर से रहित संबंध है वो मानने में जोर पड़ता है। ये बात कहा ठीक है। तो अपने जो शरीर के साथ अपनापन मानना है, ये अपनापन वास्तव में ना शरीर आपका स्वरूप है ना शरीर के साथ अपनापन है। अपनापन भी कैसे होगा? अपनापन है वो मिलने से एक बड़ी शांति मिलती है। जैसे बालक अपनी माँ को माँ मानता है, मेरी माँ है, तो वो माँ के बिना रोता है, परंतु जब माँ मिल जाती है तो गोद में चला जाता है, रोनावन हो जाता है, आनंद हो जाता है, खुश हो जाता है। कारण क्या है? मेरी माँ है। ऐसे संसार के साथ संबंध है, चाहे आप भेदभाव से माने चाहे अभेद भाव से माने, शरीर और संसार की चीज मिलने पर संतोष होता ही नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया होने पर क्यों संतोष होता ही नहीं? क्यों नहीं होता? कि मूल में गलती है, बालक जैसे शरीर से अपनी माँ को माँ मानता है तो माँ के मिलते ही शांति हो जाती है। पर आपको कितने रुपये मिल जाते, रुपयों के साथ अभिन्नता आपकी हो नहीं सकती। शरीर कितना ही सुंदर हो उसके साथ अभिन्नता आपकी हो ही नहीं सकती, ये हो सकता ही नहीं। इस वास्ते इनके साथ जो आपने मान लिया अपनापन, मान करके भी आपने अभिन्न भाव से संबंध मान लिया, शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिया, तो शरीर के साथ अभिन्न मानने से अब शरीर के साथ संबंध आपका हो जाएगा। अब बात बताऊं, एक दूसरी बात बताऊं, ख्याल करें आप। अब शरीर से आपने भोग के लिए संसार के साथ ममता करी, धन को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, जमीन को अपना मान लिया, तो ये अपना अपना हो जाएगा चल जल्दी से, क्योंकि इनका संबंध ये जड़ एक जाति है, शरीर की जाति है ये पदार्थ है, और शरीर जाति है उस पदार्थ जाति है शरीर है। क्षीर जल पाव गगन समीरा पंच अदम शरीरा, तो इनके साथ एकता होने से ये बात हो गई। अब इसमें एकता में भी अभिन्न भाव का संबंध है, ये बहुत ज्यादा गहरा संबंध है भेदभाव संबंध की अपेक्षा। अहंता से ममता दूर दिखती है, अहंता तो नजीक दिखती है, तो अभिन्न भाव का संबंध हो जाने से और इसको भेदभाव दोनों संबंध मानकर अभेद भाव संबंध मानने पर भी एक बहुत बड़ी भूल ये होती है कि शरीर की मुख्यता मान ली। अभेद भाव का संबंध होने पर भी अगर ऐसा माने कि वास्तव में शरीर में दो है एक नहीं है, अगर यहाँ ये गुत्थी खुल जाए तो ठीक है, सन भगवान का संबंध बहुत जल्दी हो जाएगा और मानने में आ जाएगा। और जब तक शरीर की मुख्यता रहोगे रखोगे तब तो यही संबंध ठीक होगा। इससे क्या होगा कि आप पाप करो पुण्य करो उसका फल भोगने के लिए अगर जन्म लेना पड़ेगा और पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से इंद्रियों से अंतःकरण से आपने सुख भोगा है और उस सुख भोग को अपने भोगा है, आप अपने को मान लिया सुखी और दुखी। भोगों के बीच में बताया है ना, कार्यकरण करते हुए हेतु प्रकृति उच्चते, अरे पुरुष सुख दुख ना भोगते हुए हेतु उच्चते, और भोगता में मुख्य मान लिया पुरुष को, तो भोगता आप बन गए, आप वास्तव में भोगता नहीं है। उपनिष्टान मंत्रा से भरता भोगता महेश्वर परमा विवेकता तो देह स्मिन पुरुषा पर, देह से पुरुष पर है अलग अलग है, परंतु उसको भरता भोगता आपने मान लिया, कर्ता मान लिया, तो कर्ता मान लिया तो भोगता आपको पड़ेगा, तो ये आपके साथ कर्मों का संबंध जुड़ गया। तो शरीर को मैं और मेरा माना तो स्थूल सूक्ष्म शरीर को अपना मान लिया, अपना मान लेने के साथ कर्म होते हुए वे अपने हो गए, तो उसका फल भोग भी आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर इसको अपना नहीं मानते तो फल भोग अपने क्यों भोगना पड़ता, मनुष्य में किए हुए कर्म नरक में भोगना पड़ता है, स्वर्ग में शुभ कर्म स्वर्ग में भोगना पड़ता है, तो ये दोनों भोगने पड़ते हैं किए हुए कर्मों का फल। तो इसका कारण क्या कि शरीर को मुख्य माना, तो शरीर के नहीं आप शरीर को मुख्य माना, इस बात शरीर के किए हुए कर्म आपके कर्म हो गए, वे कर्म आपको सुख दुख देंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। तो इनमें अभेद भाव का संबंध होने पर भी मुख्यता शरीर की रखी, अभेद भाव का संबंध होते भी मुख्यता शरीर की रखी, अपने बिल्कुल भूल गए विमुख हो गए, अपने अपने स्वरूप से हो गए सदा विमुख, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसके सन्मुख हो गए, उसकी एकता कर दी। इस वास्ते आप जो ही कर्म करते हो वो कर्म से सुख भोगते हो तो भोगने में हेतु पुरुष है, पुरुष की मुख्यता है, क्योंकि सुखी दुखी पुरुष होता है, वहाँ अंतरण थोड़े ही सुख दुखी होता है, मन बुद्धि थोड़े सुख दुखी होते हैं, आप सुख दुखी होते हो। उसमें अहम को ऐसा नजीक मान लिया कि नजीक बिल्कुल अहंकार, ये तो मेरा स्वरूप ही है, मैं ही हूँ। अहंकार के बिना अपनी सत्ता ही नहीं मानते, तो अहंकार से ही आप भोगता बनते हो, सुखी दुखी होते हो, तो पाप और पुण्य करते उसके कर्ता भी आपको बनना पड़ेगा, अरे भोगना ही पड़ेगा। कोई काम करो आप मुख्य रहोगे, शुभ काम किया अशुभ काम किया कोई किया तो आपकी मुख्यता रहेगी। तो आप में जड़ चेतन सिर्फ भोगता बनता नहीं, जड़ भोगता बनता नहीं और चेतन भोगता बनता नहीं, तो चेतन दोनों के साथ मिलकर के आपने काम किया और मिलकर के आप भोगता बनते हो, कर्ता बनते हो। उसमें अभी शरीर की मुख्यता है, अपने स्वरूप की गौणता है। अपना शरीर अपना स्वरूप तो एक रहता है, चाहे मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, चाहे देवता बनो, चाहे राक्षस बनो, चाहे भूत बनो, चाहे प्रेत बनो, कुछ भी बनोगे तो शरीर की मुख्यता रखोगे तो आपके फल भोगना पड़ेगा ही, क्योंकि आपने किया कर्म शरीर को साथ ले करके। तो शरीर को साथ लेकर शरीर की मुख्यता मानने से शरीर के साथ संबंध जल्दी हो जाता है और परमात्मा के साथ संबंध जल्दी बैठता नहीं। क्यों नहीं मानता कि आपने मुख्यता शरीर की मान ली? अगर शरीर मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं, तो मैं भी मानुष हूं, जीव लोक जीव भूत सनातन। जैसे शरीर माँ का अंश है, ऐसे आप स्वयं परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, तो ईश्वर का अंश होने से हमारा खास संबंध तो ईश्वर के साथ है, जैसे बच्चे का खास संबंध माँ के साथ है। माँ का शरीर है, उसका शरीर पैदा हुआ है, ऐसे आप ईश्वर के अंश हो। तो ये बात अगर मालूम हो जाए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये अगर अलगाव का अनुभव हो जाएगा तो मैं भगवान का हूँ, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात। अब इसमें शंका नहीं बोले, आप कोई काम करो उसमें आपके शरीर की मुख्यता रहती है, इस वास्ते कर्ता भोक्ता बनता है। गीता में बड़ा जोर दिया है और हमें इतना जोर नहीं दिया गीता जितना। गीता ने जब प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणी कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते दिवत्वा सज्जते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियों कर्ता हुआ, आपको कर्ता नहीं बताया, आपको नहीं कर्ता नहीं हुआ। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यह आत्मानं आकर्तारं कर्तापन बिल्कुल प्रकृति का है, ऐसा अनुभव करो तो अपने अकर्ता का भाग होगा, अपर्ता ज्ञान हो अनुभव हो जाएगा, फिर आपके कर्म लागू होंगे ही नहीं। जब तक अकर्तापन का अनुभव नहीं होता तब तो लागू होते हैं। अब अकर्ता है तो कर्ता भी आत्मा नहीं है, तो कर्म के साथ आत्मा कैसे मिलेगा? तो मैं कहता हूँ कर्म निरपेक्ष साधन होना चाहिए। अरे आप कर्म सापेक्ष करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति में भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को कारण मानते हो, सहायक मानते हो कि मन बुद्धि भगवान में लगाएंगे तब हमारे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मन बुद्धि की मुख्यता रहेगी आपकी परमात्मा की प्राप्ति में। संसार के काम करने में है वो जो है ही, पर परमात्मा की प्राप्ति में उसकी मुख्यता मान लेते हो तो फिर कर्ति छूटेगा नहीं, भोगते छूटेगा नहीं। अगर ठीक उसको मान लो तो कर्ति बोध छूट जाए, न करता रहे न भोगता रहे। कर्ण निरपेक्ष होने से बहुत जल्दी छूटता है, कर्ण सापेक्ष होने से कर्ण की गर्द आपको मन की गर्द मन की बुद्धि की गर्द होगी। ये तो औजार है हमारे, इनके बिना भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कि बिना मन बुद्धि के परमात्मा का चिंतन कर सकता है, परमात्मा का ध्यान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर इस कर्ण की अपेक्षा बाद में जो जड़ को साथ मान लेने से आपकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? जड़ को तो सहायक माना है, जड़ को साथ रखा है, तो जड़ के साथ संबंध आप अगर नित रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी। इस बात में कहूँ ना, कर्म निपेक्ष साधन हो तो उसे आप जल्दी मुक्ति हो जाएगी। कर्ण की आपको कोई जरूरत नहीं है, कर्ण की जरूरत होती है क्रिया सिद्धि के लिए। कार्य वित्तीय कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये छह कारक संबंध होते हैं। क्रिया जनकत्व कार्यकत्व, क्रिया के जनक होते हैं कारक, आत्मा के जनक नहीं होते, संबंध नहीं होता। तो ये सब के सब प्रकृति के कार्य है, उन कार्यों को आपने अपना मान लिया। अब भगवान के साथ अपना कब माने, अपना जल के साथ कर लिया, अब चित्र के साथ नहीं मान सकते। अगर ये विवेक ठीक कर लो आप कि भाई शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो मिला हुआ है, ये अलग विभाग है और मेरा अलग विभाग है, शरीर परिवर्तनशील है, स्वयं आप अपरिवर्तनशील हो, ये प्रत्यक्ष आपको अनुभव है कि बालपन में मैं पढ़ता था वही आज बोलता हूँ, सुनता हूँ, काम करता हूँ, वही मैं हूँ। तो वही मैं हूँ तो चेतन वही हो, जड़ जो बदल गया शरीर वो नहीं रहा बालपन वाला, ना बालपन देश रहा, ना काल रहा, ना वस्तु रही, ना व्यक्ति रही, ना क्रिया रही, ना घटना रही, वो है ही नहीं। वो सब बदलती है, क्यों जड़ चीज तो बदलती रहती है, चेतन चीज बदलती नहीं। तो न बदलने वाला स्वरूप आपका है, आप अनुभव ही करते हो मैं बालकपन में था वही हूँ। इसमें से आप चेतन के साथ एकता का अनुभव करते हैं, पर जो बालकपन और जवानी के साथ मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ मान लेते हो, तो वह भेदभाव का संबंध हो जाता है। तो फिर कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। साधन करो तो इनको साथ में रखो, अरे संसारी काम करो तो इनको मुख्य रखो, अरे अपने को मुख्य रखो तो निहाल हो जाओगे। क्यों ठीक है, इसमें शंका हुआ करो, जितने आपकी शंका पैदा होती हो करो। आप तो ममता छोड़ना नहीं चाहते कि संसार के साथ ममता छोड़ने, तो शब्द कैसे करेंगे हम, दान कैसे करेंगे, पुण्य कैसे करेंगे, ऐसे लगा करके हमारा शरीर एक है इसको दृढ़ करना चाहते हैं, हमारी बात का तिरस्कार कर अपमान कर खंडन करना चाहते हैं। दरअसल तो ये है, तो मानोगे कैसे, मेरी बात बांध सकते ही नहीं, आपने उन चीज पकड़ो ही। अब दोनों को विचार करो आप, साथ तर्पण करना शरीर की प्रधानता से होता है, क्यों उनकी शरीर की प्रधानता से ही आप देते हो, और जड़ चीजों का एक बार पानी दिया, पिंड दिया, जो उसे जड़ चीज दीती है दी जाती है, उसमें आप अपना मान कर रूप देते हो, जो उनकी जड़ चीज अर्पण करते हो, तो जड़ विभाग के साथ आपका संबंध है ही नहीं। जब से शरीर का है तो शरीर के साथ करो, तर्पण करो, दान करो, पुण्य करो, ऐसे बोलते मतलब जोर से कि अपना शरीर नहीं मानो, दान कैसे करेंगे। अब जानते हैं कि हमने बड़ी भर विजय कर रही, स्वामी जी क्या उत्तर देंगे, कैसे विजय कर रही, आप शंका करो, जो शंका हो आप करो, अच्छी तरह से मेरी दृष्टि से मैं समाधान करने की चेष्टा करूंगा। आप समझते हैं, आपका प्रश्न भी समझ में आता है, आप क्षमा करना, क्षमा करना, विषय को गहरा समझ करके शंका करो। आप समझे ही नहीं, शंका करेगा क्या कर सकते काम ले। बिल्कुल टकासी बात पड़ी है, परंतु मनते ही नहीं, क्योंकि उस ग्रंथ में जो लिखा है कि मन लगाना, मन से चिंतन करना, साफ नहीं लाभ शब्द में यह मनसा न मनुते ये ना और मनोमतम तभी ऊपर मतम पिद्धि नहीं देंगे नहीं उपास होते, कोई ख्याल करते ही नहीं आप। अब मेरी बात खंडन नहीं देता करते हैं, ये स्वामी जी कहते हैं गलत है, मेरा नहीं है संसार में तो दान पूरी कैसे होगा, फिर श्राद्ध कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा, आपका व्यवहार कैसे होगा, अपना मानने से ही तो माँ बाप की सेवा होती है, अपना नहीं मानने से कैसे सेवा होगी। जोर से ऐसा खंडन करते मानो इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं कहूं जिसका जवाब नहीं है, आवेद बोलो। सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, झूठी असत कैसे हो जाएगी। करो आप तर्क करो। तो सही बात है तो सही को मानो। अपनापन व्यवहार में है, अपनापन हमारी गाड़ी रेलगाड़ी आती है कि तू का हम भी वहां जा रहे हैं, ऐसे आप गाड़ी नहीं आई, हमारी गाड़ी में वो आ रही है। अब हमारी गाड़ी कहते हैं नहीं तो गाड़ी में ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, जानते हो आप, और कहते हैं हमारी गाड़ी। तो ये व्यवहार का हमारापन है, वास्तव हमारापन नहीं है। रेल में स्टेशन उतर के जल जाने के लिए जाते हो तो अच्छा आप भी इसी गाड़ी में हैं, हाँ मैं भी इसी गाड़ी में हूँ, आपका डब्बा कौन सा, हमारा डब्बा वो है, हमारा डब्बा वो है। पर उतरने के बाद कभी चिट्ठी लिखी है कि हमारे डब्बे क्या हालत है। वो हमारा केवल मांगने के लिए है, व्यवहार के लिए है। ऐसे व्यवहार के लिए माँ बाप भाई बंधु पुत्र पत्नी आदि का संबंध व्यवहार को लेकर के, तो व्यवहार को लेकर श्राद्ध तर्पण आदि किए जाते हैं। क्या श्राद्ध तर्पण से उस शरीर को मिलेगा, उसकी आत्मा को मिलेगा पानी और पिंड? कहाँ विचार है, कहाँ विचार ऐसा कर दिया। अब मैं समझते बड़ा भारी, हमने ऐसी शंका करी सारे के पास कि उत्तर है ही नहीं। हम कहते तुम्हारी शंका ही निर्मूल है, समूल बताओ। ये आया प्रश्न, ये क्या कारण है माँ बाप का भाई का पत्नी का संबंध पट हो जाता है, उसका क्यों नहीं होता? तो आपने शरीर को मुख्यता दी, इस बार शरीर का संबंध पट हो जाता है। आत्मा को मुख्य दो तो परमात्मा संबंध ही आपके होगा, इनके साथ संबंध होगा ही नहीं। ये तो व्यवहार के लिए है। खेल में जैसे कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई मेघनाथ बनता है, तो मेघनाथ थोड़े हो जाता है वो तादाद में करके भी मुख्यता शरीर की कर ली, आत्मा को गौण कर लिया। तादाद में करके भी क्या कर ली गई, ये बात है। ऐसी बात मैं कहूं वो मानेंगे नहीं। अगर अपन बने होते हैं ना, हर लोग स्वामी जी कहते हैं अपने ही मानते, कैसे अपना नहीं मानने से कैसे होगा, दान कैसे करें, अपना धन नहीं माने दान कैसे होगा, अपना नहीं मान तो साध कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा, हो ही नहीं सकते ये अपना नहीं मान बोले। अरे अपना मानना क्या है, वो अपनी गाड़ी की तरह मान रहा है अपना, ये अपना स्वरूप है क्या? फिर दान का फल स्वरूप को मिलता है क्या, तर्पण का फल शरीर आत्मा को मिलता है? ये विभाग है अलग, जड़ का चेतन का विभाग अलग है। इस बात को मानते हैं, ये खंडन करें चेषा करते हैं। आप खंडन करो, कोई शंका करो बढ़िया, हमारे तो फायदा होगा, हमारे फायदा होगा। आप शंका करो मुझसे,
ठीक नहीं, आत्मा की गौणता किसकी प्रधानता से होगी?
शरीर की प्रधानता से, शरीर की प्रधानता से आत्मा की गौणता होगी। हाँ जी, हाँ स्वयं करी तो स्वयं है, पर प्रधानता शरीर की मानी है। स्वयं के स्वरूप में चेतन जड़ दो आप, पर जड़ की मुख्यता मान ली आपने, स्वयं में हुई, इसमें कहा गया है तभी तो दुख स्वयं पाता है, और भूल मिटने से स्वयं की मुक्ति होती है। अरे इसको ठीक समझो, बिल्कुल चौड़े बात, जैसे रात और दिन हो, जैसे अलग अलग स्वभाव स्वाधीनता है, ये जड़ विभाग है, ये चेतन विभाग है। आज सुबह प्रसंग चला था,
तो अरे
अरे भाई
पार्वती माता का शरीर भस्म हुआ है यज्ञ में, और ऐसे हमारे शरीर अग्नि में भस्म रहता है, हम जब पांच अंगुली की देखते हैं तो अंगुली बढ़ जाती है, और बहुत से संत महापुरुष जो अग्नि में अग्नि स्नान करते हैं उनका शरीर भस्म क्यों नहीं होता, और हम भी भगवान के भगवान कृपा से हम भी भजन करते हैं आपकी कृपा से आज क्या
करते हैं कोई प्रश्न को कौन नहीं मिले
क्या बात
है? बैठ जाओ बैठ जाओ कोई कोई
आप समझे नहीं क्या बोल रहे हैं?
ये बोल रहे हैं कि सती मारुति अपनी जल गई, संत महात्मा के नहीं प्रवेश करके जलते नहीं है, तो हम भी आप क्या कहते भजन करते हम जल जाते हैं,
क्या आप जल जाओ हमारे साथ पति प्रद बन जाओगे? वो धर्म की मुख्यता है, सती होने में धर्म कर्तव्य धर्म, एक सती होने को जा रही थी तो कहते पति तो मर गया, पहले श्रृंगार किया, ढोल बजा रही है, आनंद मना रही है पति के मरने पर, सती होने को जा रही है, क्या सती है तू, पति मर गया श्रृंगार कर रही है और गाजा बाजा बजा रही है, क्या बात है? तो उसने कहा कि ढोल बजंते हे सखी तो ये आये मोई लैन, अब मैं पीछे जाता हूँ पीव का बजेगा लैन, और ढोल बजाते आये मेरे साथ संबंध किया, मैं ढोल बजाते जाती हूँ उसके साथ में बजा लेने के लिए।
वो आए थे
जब वो ढोल बजा कर आए बरात बना कर आए, तो मैं भी उनके साथ जाती हूँ ढोल बजाती हुई। तो ये पति पत्नी का संबंध शरीर की प्रधानता को लेकर गए, शरीर की प्रधानता एक धर्म होता है, माँ के बाप की सेवा करो, पत्नी का पालन करो, लड़का लड़की का पालन करो, ये शरीर को लेकर संबंध है। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, नमी वान सो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। भूता पर आपकी वृत्तियां आ जाती है, आप नाराज हो जाए वृत्तियां ऐसी आ गई, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो ठीक बात है, साधक को चाहिए वृत्तियां नहीं हुआ ऐसी, पर ऐसी वृत्तियां हो जाए तो घबरा जाते हो। तो मैं सुबह प्रसंग बताया था कि समुद्र है, उस समुद्र के ऊपर लहर आती है, और ऊपर था कि समुद्र है, उस समुद्र के ऊपर लहर आती है, और ऊपर विराज जी चलते हैं, कई काम होते हैं ऊपर, तो ये शरीर समुद्र ऊपरी भाग है, और भीतरी गहरा भाग बिल्कुल निर्जल है, ऐसा गहरा भाव जो आपका है, और ये संसार भाग है ऊपर का लहरों की तरह, ये भाग है संसार का। तो दो भाग है आपके, जो स्वरूप का भाग है वो बिल्कुल निश्चिल है, बिल्कुल है, अकर्ता है अभोक्ता है, वो है ऊपरी का भाग ये है। अब ऊपरी के भाग में होगी भीड़, उस संसार में रहने वाला वो घबरा गया, मेरे में काम आ गया, अगर क्रोध आ गया, अगर लोग क्या आ गया, तुम्हारे कहाँ आ गया, तुम्हारा वो निश्चल सला चलेंगे अमर अथान अर्थे निरपक निजान पर जानो परम गुरु परमेश्वर जानो अजर अमर अखंडी आप अखन अनुभय अनुभंगी अन आप अनु अनुभंगी और भंगन सारे मात पिता नहीं गोद खिलाए, और नामुख मोन ग्रह नहीं बोले, खालक खलक पलक नहीं खोले, ना कुछ हल्का ना कुछ भारी, ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी, अगमा गमा अवगत, ये आपका स्वरूप है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ये स्त्री पुरुष टोली में है, तो ऊपर ऊपर के विभाग में है, तो ऊपर के विभाग में साधु पंड दान पुण्यादि है, आपका दान पुण्य है, दान पुण्य लगेगा आपको, क्या तर्पण करे श्राद्ध करेगा आप पुण्य आपको मिलेगा स्वयं को।
शरीर को लेकर सती होती है और उसकी मुक्ति हो जाती है,
मुक्ति हो सकती है उसके अन्य जो प्रभाव होगा, उसे मुक्ति होती है धर्म का पालन करने। श्रेयान स्वधर्मो द्विगुण पर धर्मा सुनिश्चित स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन कर मुक्ति हो जाएगी। अपने धर्म का पालन किया है केवल महाराज मुक्ति हो जाएगी, इतनी बात नहीं है। सत्य अगर ठीक होती है तो पति होता है द्व्याचारी, और वो सदाचारी अपने धर्म का पालन करने वाला ठीक है तो स्त्री नारी मर करके पति लोग को जाती है तो पति लोग जाए पति जाएगा नरकों में तो अगर क्षति नरकों में जाएगी क्या होगा कि जिसने अपना धर्म का पालन किया है तो इस धर्म के पालन कारण से पति का उद्धार कर देगी। छोटे में चल जाती है स्वास्थ्य विषय को ठीक है समझो ठीक होगा। पर मैं कहता हूं मेरी बात तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी खंडन करते हैं वेदांत का। वेदांत की बात अद्वैत सिद्धांत की मैं बात पूरी कहता हूं फिर खंडन करते हैं। खंडन की ऐसी बातें आती है अब आप मन और बुद्धि साथ को लगा करके चिंतन करते हैं उसका ध्यान करते हैं फिर ध्यान होता है फिर समाधि होती है समाधि में आप समझे। अरे समाधि बिना कारण शरीर की समाधि नहीं होती। समाधि विथान दो अवस्था होती है जब जड़ के साथ संबंध रहता है या जड़ के साथ संबंध रहता ना समाधि होती है विथान होती है वो समाधि सहजावस्था उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा वो सहजावस्था आपका स्वरूप है। सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम हरिया जीव शिव का एक नाम विश्राम सहज तन मन कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और पूजा ये बात है।
मैं मेरा मिट जाएगा तो स्वरूप का ज्ञान होते ही तत्व से मिलकर एक हो जाएगा फिर इस स्थिति में भगवान को मानने वाला कौन होगा।
भगवान को मानने की जरूरत नहीं भगवान के साथ एक हो गया। भगवान मानने की जरूरत क्या रही जब भगवान में ही मिल गया तो भगवान की क्या जरूरत रही।
मन मारना किसे कहते हैं।
मन मारना उसको कहते हैं कि मन के चलने में उनके काम करने में आप साथ न दो तो मन मर गया। अगर आप सोच जीता है वो खूब और अच्छी तरह से फिर आपको ले जाएगा जहां जाओगा वहां पर यंग यंग आपके स्मरण भाव में गले में कम कम एव ए थी कौन थे उसी लोग हो गए। वो मन की जीता है और मर गया क्या अब मन की चाल मिट गई आपकी चाल मुख्य हो गई। देहाभिमाने गल से विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाध है। देहाभिमान मिट जाए और परमात्मा को ज्ञान हो जाए तो मन जहां जाएगा वहीं समाधि हो जाएगी। मन वही करने जरूरत नहीं जहां जाएगा परमात्मा का अनुभव करेगा तो उसको समाधि क्या जरूरत है सहज समाधि होगी।
भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं।
इसी को ही कहते हैं जो जड़ता से संबंध विच्छेद कर दे।
मुक्ति से प्रेम श्रेष्ठ है क्या है? मुक्ति से प्रेम श्रेष्ठ है क्या।
हाँ प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम क्या होगा कि संसार का संबंध छूटेगा जो आज संसार में आकर्षण है वो चिन्मय तत्व में आकर्षण होगा। चिन्मय तत्व आकर्षण उसको कहते हैं प्रेम और जड़ के साथ आकर्षण उसको कहते हैं मोह आसक्ति कामना वासना। जी
भगवान परमात्मा ईश्वर इन तीनों के विषय में विवेचन करने की बात करें
तो कोई जरूरत नहीं। भगवान गीता में भागवत में कहा है कि ब्रह्म थी परमात्मा थी भगवान शब्द थे। ये शब्द कहते हैं ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं ये शब्द कहे जाते हैं तत्व तो एक है।
सतपंच छुपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे
ठीक है।
तो ये कौन सी छुपाइयां हैं।
वे छुपाइयां चार चीज है भगवान के चरित्र में चार चीज होती है। एक नाम होता है एक रूप होता है एक धाम होता है एक लीला होती है। नाम रूप लीला धाम ये सगुण की चार है। तो चारों में नाम और रूप और लीला और धाम, इनमें लीला की चौपाइयों तो बहुत ज्यादा है। चार धाम हुए ना, और धाम की बहुत कम है, और स्वरूप की है उनके भगवान की स्वरूप की वे चौपाइया ज्यादा है, नाम रूप रूप की। तो रूप की चौपाइयों आप चल लो तो मैं पांच विधान पांच सर्व हो जाएंगे, जिसमें ये 500 समझ ज्यादा है लीला की, और धाम की बहुत थोड़ी है, और लीला से स्वरूप की ज्यादा है, और नाम की है। जो नाम और रूप लीला धाम है, इनकी जो 500 पाई को विधान करे मुक्ति हो जाएगी। नाम नाम रूप नाम की लीला धार करे, लीला धार करे, धाम की करे, स्वरूप की करे।
महामंत्र ये जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, ये कौन सा मंत्र है?
राम 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 राम, अध्यात्म रामायण में साफ आया है। भगवान शंकर राम जी की स्तुति करते हैं, वह कहते हैं दिशा में मंत्रम तव राम नाम, आपका मंत्र राम नाम का मैं दर्शन उपदेश देता हूँ। जग में जितेक जड जीव जाकी, अंत समय जम के जबर जोधा खबर लिए करे, काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की फांसी यम नासन को शासन दिए करे, मेरी प्रजा वह के किम पैकाश सालक विचार हमेशी ये करे, कारक की भनक पिता की ये प्राण के प्राण समय कान में किए करे, कान में तारी बड़े राम नाम स्वाद दे। घनश्याम जी कहते मैंने देखा काशी में कोई मरता है और जीवन का काम ऊंचा हो जाता है, भगवान शंकर मिलते उपदेश मुक्ति हो जाती है। काशी मत उपदेश नाम जो मंत्र महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश
सठ सुधर जाता है सत्संग से, सठ सत्संग से सुधर जाता है। मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता, तो सठ में मूर्ख में क्या फर्क है?
सठ में मूर्ख में फर्क है, सठ तो अंदर आदि का है और मूर्ख नाम जान करके मानता नहीं उसका है। सठ तो सठ सुन रही सबसे कुछ भाई, और मूर्ख मेरे चेत जो गुरु मिले ग्रंथ सब सुख से समझे तो मूर्ख अति सुख विदुषित जाए, अर्धदग्ध मतिमंद को विदुर सके समझाए, तो अर्धदग्ध और मतिमंद उसका नाम है मूर्ख, और बिल्कुल नहीं समझता उसका नाम है सठ, तो नहीं समझता वो ठीक मानेगा। सोता हुआ जाग जाएगा, मैं सोता हुआ जान कर सोता है उसको कौन जगाएगा? तो मूर्ख को नहीं जगा सकते, मूर्ख ऊंधी बात पकड़ता है। अधर्म धर्म जीवन में तमसा करता सर्वार्थाम विपरीत वास्ते बुद्धि पारसी, तो उसको कौन सहता है? नींद तो उन्हें जगा दे, अगर मूर्ख होता हूँ छूटते नहीं। सुख से समझ तो मूड समय अति सुख विदु से रिझाए, अर्ध दग्ध मतिमंद को विधिन से समझाए, अर्धदग्ध मतिमंद को मूर्ख होता है, अर्जान होता है वो सच होता है। ये भेद है गोसा भी का, अर्थ खोल के पूछो, अभी खुल गया है मेरा फायदा होता है, आप पूछते हो उस हमें लाभ होता है, आपको ही लाभ होगा। सत्य हृदय से बात करने वादे वादे जाए थे तत्व बोधा वाद प्रवत आना हूं जल जल और विचंदा से नहीं। तीन तरह कथा होती है, जल कथा विचंदा कथा वाद कथा। वाद नाम इसका है जो निर्णय करे सत्य सत्य का, बहुत लाभ होता है, एकदम प्रकाश हो जाता है, लंच खुल जाता है।
दूर से बोलो भाई, नाम रूप लीला की चौपाई आप कहे ना, तो कौन कौन सी रामरूप लीला की छुपाई कुछ बता
सकते? मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को सब रामायण याद नहीं है। आप ढूंढो रूप का वर्णन है, नाम का वर्णन है, नाम की महिमा 1927 तक है, 9-2 में, 9-2 में नाम की महिमा, वो नाम का वर्णन एक जगह है। ऐसे धाम का अयोध्या का वर्णन जितना है वो धाम का वर्णन है, और ये नाम का वर्णन है, और भगवान के स्वरूप का जो भगवान बाल रूप कैसा है, बनवासी रूप कैसा है, उसका वर्णन है, वो रूप का वर्णन है, नाम रूप लीला, और लीला का वर्णन भगवान ये किया वो किया, तो लीला का वर्णन ज्यादा है, अधिक है, नाम का रूप का धाम का वर्णन तीनों कम है।
नाम नाम
की ना। तो महाराज जी बताए थे 1928 और पूछो, पूछने से दिल बहुत खुलता है। अब मेरे को क्या पता आपके चित्र में कहाँ कहाँ अटकाव है, कहाँ गुंडी पड़ी है, कहाँ अटकते हैं, पूछोगे तो पता लग जाए ये बात, तो मैं कर दूंगा। वो मैंने पूछे कहता हूँ वो ठीक है, लोग सुनते हैं, आप ही कहो करते जाओ तो मैं क्या बताऊंगा। मन उसमें शंका कर आप जानना चाहोगे तो बहुत विशेष लाभ होगा, जिस विषय का प्रतिपालन करे उस विषय में गहरे उतर करके प्रश्नोत्तर करो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा।
नाम जपने दृढ़ता से विश्वास कैसे हुए?
नाम जपने से,
नाम जपने
नाम में विश्वास जपने से होता है, बातों से नहीं होता, जपने से पता लगता है, छोड़ नहीं सकता, फिर दूर दूर दर्शन कैसे हो जाएगा, जल्दी नाम से होगा। संसार का ज्ञान होता संसार से अलग होने पर, परमात्मा सब का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ एक होने पर, क्यों वास्तव में परमात्मा के साथ आप एक हो, और संसार के साथ शरीर एक है, आप संसार से एक नहीं हो, अलग हो, तो अलग होने से संसार ज्ञान होगा, अरे परमात्मा तो ज्ञान होगा परमात्मा के साथ अभिन्न होने से, यथार्थ होने से ज्ञान होगा। मैंने चाय का एक दिन वर्णन किया, बहुत वर्षों की बात है, 2000 के बाद बाद तो किया, तो एक वकील थे वो बैठे थे, तो केवल क्या चाय छोड़ी, चाय खोली, वो कहने छोड़ी थी, वो कहते शायद निभे अभी सबन कैसे कह दें। 2-4 दिन के बाद बोला कि मैंने सभा में कहा नहीं, मैंने सभा छोड़ दी, तो देखो रोगी भी इनसे पिए, फाइसिस वाले भी पिए, उसी पहले में हम पिए, गऊ भक्षक भी उसी में पिए, हम उसी में पिए, ये आप उन खुद में गई, तो ये ज्ञान कब हुआ, चाहे शुरू हो चाहे ज्ञान हुआ, चाहे पीता हूँ ज्ञान थोड़ी होगा। ये माना चाय पीना छोड़ दो ऐसा मैंने कहा, अमरावती बात है ये, सातवीं मासा अमरावती उस समय, तो मैंने कहा भाई चाय छोड़ो, दर्शन छोड़ो, तो बहुत आदमी ने छोड़ दिया, मेरे पास ही बैठे थे कि वकील, वो वकीलों को पढ़ाते थे, ऐसे बड़े वकील थे, वकालत भी करते थे, वकीलों को पढ़ाते भी थे, तो कोई बोले नहीं कुछ भी, मैं भी कैसे बोलूं सभा में कि तुम छोड़ो, ऐसा कहा नहीं मैं किसी को, छोड़ो ये कहा। तो 2-4 दिन बाद में भी मिले, कोई छोड़ा तो नहीं, सभा में कहा नहीं, कि छूटेगी नहीं छूटेगी क्या पता, इस बात बोला नहीं, पर मैंने चाह पी नहीं रहा मुझे, तो चाह न पीने से ये ज्ञान हुआ कि मांग बड़े बड़े रोग वाले जिस प्याले से पीते हैं उसी प्याले से हम पीते हैं, तो संक्रमण व्याधि का संक्रमण होगा, और गो भक्षण करने वाले पीते हैं उसी प्याले से हम पीते हैं, तो गौ रक्षा की बात हमारे कैसे बैठेगी, ये बात उन्होंने खुद ने कही, तो चाह छोड़ने पर चाह के अवगुण उन्होंने बताए, ऐसा भी छोड़े नहीं बता सकते,
तो जड़ चीजों के साथ एकता करोगे तो जड़ता का ज्ञान नहीं होगा और चिन्मय तत्व से अलग रहकर आप विवेचन करोगे ज्ञान नहीं होगा। आज बुद्धि के द्वारा ये जो ब्रह्म मानते हैं, बुद्धि के द्वारा ईश्वर मानते हैं, बुद्धि के द्वारा माया मानते हैं, बुद्धि के द्वारा जीव मानते हैं, सब आपके बुद्धि का विषय होता है। ऐसी पढ़ाई कर नहीं सकते बहुत थोड़ा ही जाएगा, क्यों ब्रह्म तो आपकी बुद्धि का विषय है, ईश्वर आपकी बुद्धि का विषय है, जीव आपकी बुद्धि का विषय है, प्रकृति आपकी बुद्धि का विषय है। यार बुद्धि के विषय को जो आज जानते हैं हम समझ गए, क्या समझ गए, बुद्धि का विषय ब्रह्म है। आपकी बुद्धि का विषय ब्रह्म कितना बड़ा होगा, ये पढ़ाई में ये होता है। असंग योग, असंग जो संसार से अलग नहीं होता तो योग प्राप्त कैसे होगा। मैं कहूँ वही बात तो कही है भगवान ने, अगर भगवान ने कही हो मैं कहता हूँ। जो असंगतात्मा है विषयों से इंद्रियों को अलग नहीं कर सकता, मन को विषयों से अलग नहीं करता, तो योग प्राप्त कैसे होगा उसको। जो सत्मा ना जा सके वो वश्यात्मा होगा, तो वश्यात्मा वो होगा जो संसार से ऊंचा उठेगा, संसार के भोगों में रहता है वैश्यात्मा हो जाएगा। लाओ शंका खूब करो, भागवत की गीता की खूब भक्त लाओ, प्रतिष्ठा लाओ, वेद की करो। दूर लोग चार ही होते हैं, पर तीन में पांच नहीं होते। तो भाई क्या कहते हैं,
आत्मसत्म मन के तान है किंतु चिंते, इसका क्या अभिप्राय।
ये बात मैंने बताई है, ये बीसवें श्लोक में आता है ना, तो वो आत्मसंस्तम मन कृत्वा, आत्मसंस्तम मन कृत्वा की मैंने व्याख्या की है, कई बार कहा है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है ऐसा मानकर चुप हो जाओ। ये मन को आत्मा संस्त किया है, आत्मा को मन पकड़ लेगा ये बात नहीं है। यही तेल जो तस्तरगो ये सब साम्य स्थित मना, मन साम्यावस्था में स्थित होगा तो संसार को जीतोगे। मन लगा करके संसार में कैसे संसार को जीतोगे, मन लगाकर परमात्मा को नहीं जीतोगे, क्यों जड़ का त्याग बिना परमात्मा को जान ही नहीं सकते। और संसार का तल्लीन होकर संसार को जान ही नहीं सकते, क्यों आप स्वरूप से संसार के साथ एक नहीं है और परमात्मा के साथ एक है, तो सही होने से ही उसका ज्ञान होगा, नहीं तो गर्व होने से कैसे ज्ञान होगा। ध्यान दिया, आप स्वयं संसार के साथ नहीं है, इस बात से संसार का ज्ञान आपके अलग होने से होगा, और परमात्मा के साथ एक है इस बात से परमात्मा का ज्ञान आपका एक होने से होगा। अलग बैठे बैठे परमात्मा का ज्ञान कैसे कर लोगे, मन बुद्धि के द्वारा। पर आप स्वयं परमात्मा के साथ अभिन्न है और संसार से आज भिन्न है, तो संसार से भिन्न होने से संसार का ज्ञान होगा, और परमात्मा तत्व के साथ अभिन्न होने से परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा। दूर बैठा कर दो बुद्धि का विषय हो जाएगा, ईश्वर की बुद्धि का विषय, जीव बुद्धि का विषय, माया की बुद्धि का विषय, ब्रह्म की बुद्धि का विषय करते रहो वर्षों तक। ये जो अपनापन परमात्मा के साथ करता है वो आप स्वयं शरीर से अलग हो करो तो हो जाएगा तच, और शरीर को साथ करोगे तो नहीं होगा।
हाँ,
और क्या कर सकते, यही कर सकते हो आप। इस कारण में उन्हें से मात्र अधिकारी है, क्यों इसमें विवेक शक्ति है, पशु पक्षियों में नहीं है, देवताओं में नहीं है, वो विवेक शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है। उस विवेक शक्ति से दोनों को अलग अलग हो, विचित्र पृथक भाव अलग अलग हो जाएगा, ठीक बोध हो जाएगा।
हाँ
हाँ हाँ, आत्मसंस्थ करने के मैंने शुरू कई बार बताया, अभी बता दिया फिर बताऊं। आत्मसंस्थ मन कृत्वा का तत्पर तात्पर्य
एक सत्यदान परमात्मा ही है, ऐसे मन को कर लो, फिर चिंतन मत करो। चिंतन करो तो मन साथ में रहेगा, चित्त साथ में रहेगा। ऐसा मन करके फिर कुछ चिंतन मत करो, स्वर्ग स्थिति हो जाएगी। ये आत्मसमन कृपा का अर्थ है। दूसरा तो आप बताओ, मेरे आग्रह नहीं है, आप बताओ, मेरे को अर्थ और नया मिलेगा, मेरे को फायदा ही है। स्वयं कोई प्राप्ति होती है
अपने
ये बात ठीक है, अपने से अपना खास परमात्मा से ज्ञान होता है।
आपको हम नहीं जाने कि परमात्मा का विश्वास
कर, ठीक बात है। जीवन जाने जीव के दिल पर जाने कौन, मानो मन के द्वारा संसार का चिंतन मत करो। मैं ये मन आधस्व चिंतन नहीं कहा है, आधस्व कहा है। मैं ये मन आधस्व, आधस्व अगर क्या होता है, दूसरा धन पोषण जो है जो आनुपूर्वक स्थापन करने का है। विपूर्ण उधा करो तरफ से अभिपूर्ण भाषण है, संपूर्ण सम्मेलन करो तो न्यायपूर्ण स्थापन है। बता एक पल बात वही है, ऐसे स्थापन करो, मन को रख दो। चिंतन के द्वारा मन नहीं चिंतन करता परमात्मा का, एक परमात्मा ही है, ऐसा चुप हो जाओ। ये मन मई मन आदर्श पर मई बुद्धि निवेश है, पर निवेश से तो मैं ये ऐसे उद्भव संशय। खूब गुरु शंका
प्रश्न महाराज जी, एक प्रश्न है, छोटा ही सा प्रश्न है। हमारा सनातन धर्म ये मानता है क्या कि पूरे विश्व का अथवा पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली सिर्फ एक ही सर्वोच्च शक्ति है जिसे हम परमात्मा ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार अगर दूसरे धर्म को मानने वाले जिसको अल्लाह ईसा मसीह के नाम से कहते हैं, वे भी उसी ईश्वर को पूछते हैं जिन्हें हम पूछते हैं, अथवा वे एक दूसरी शक्ति
है। शक्ति एक तो एक ही है, परंतु कई शक्ति को चेतन मानते हैं, कई शक्ति को मानते हैं प्रकृति मानते हैं। शक्ति क्या है इसका विवेचन जैसा सनातन धर्म ने किया है, मेरी समझ में वैसा नहीं आया है। और जगह परमात्म तत्व का विवेचन जितना सनातन सिद्धांत में किया है, ऐसे किसी सिद्धांत में नहीं आया है। मैं सब पढ़ा हुआ नहीं हूं, पर आपको मालूम तो आप बताओ, ऋषि मुनि जितने गहरे उतरे हैं ऐसा कोई और गहरा नहीं उतरा है। इसमें मैंने बहुत गहरा विचार किया, रसोई कैसे बनाने जा रही है इसमें गहरे उतरे, रसोई में भी आयुर्वेद भी उसे गहरे उतरे, जो विषय लिया है ऋषियों ने उसमें बड़े गहरे उतरे हैं। ये सनातन धर्म में इस बात के उसे संतान बंद करो, संतति नहीं होगी तो हमारे ग्रंथों को पढ़ेगा कौन। मेरे को एक साथ ने कहा शायद 1925 में 2025 में कहा कि आए साधुओं का काम थोड़े ही है, ये तो गृहस्थियों का काम है। नसबंदी मत करो, तुम ऑपरेशन मत करो, ये तो गृहस्थों का काम है। अब साधु क्यों करते हो पंचायती है, ये साधुओं का काम ही नहीं है। मैं कहूँ साधुओं के पंचायत के बिना सनातन धर्म को कौन सुनेगा, उस ग्रंथों को मुसलमान पढ़ेंगे क्या, ईसाई पढ़ेंगे क्या, पारसी पढ़ेंगे। सनातन धर्म आदमी नष्ट हो जाए तो कौन रहेगा, कौन पढ़ेगा, किसी को पता ही नहीं है। इस बात से कहते तुम गजब करते हो जो संतति का निरोध करके नष्ट करते हो। अरे संतति निरोध करते हो, वे बनेंगे पैसे मनुष्य, वे बनेंगे ईसाइयों में और वे बने मुसलमानों में, जो सनातन धर्म का नाश करेंगे। आपके विरोधी को दुगना बताते हो। कौरव और पांडवों की सेना दोनों नौ छोड़ी हुई, परंतु दो अक्षरणी दुर्योधन ने अपने कपट से अपनी चालाक से ले ली, तो शल्य की अपने ले ली एक अक्षरणी, वो एक अक्षरणी भगवान की दो अक्षरणी वजह से दो अक्षरणी गहरे से बढ़ती कितने कि ये होगी 7 अक्षरणी, वो होगी 11 अक्षरणी, 8 9 10 11 400 बढ़ेगा।
इस वजह जितने कम में आप में संतान हो गए उससे दुगने मुसलमानों में हो गए, वे थोड़े होते हुए आपको मार रहे हैं और उस दुर्बल को दूरी से आप सहायता कर रहे हो, नसबंदी करके ऑपरेशन करके, समझेगा नहीं। नौ नौ अक्षोणी में से दो अक्षोणी उन्होंने अपने पक्ष में ले ली थी उधर ने, तो दो अक्ष लेने से चार अक्षोणी बढ़ गई उधर। ऐसे आपकी संतति घटने से दुगुनी बढ़ेगा मुसलमान ईसाइयों की, ये क्या दशा करेंगे आपकी। हिन्दुओं ने मुसलमानों का तो नाश किया पर मुसलमानों के धर्म का नाश नहीं किया, और मुसलमान ने हिन्दुओं के धर्म का नाश किया, मंदिरों का नाश किया, और बड़े बड़े शास्त्र वे बार बार करके चाय करके पी गए, वही क्या फायदा हुआ उनको, उनकी वृद्धि कर रहे हो आप और अपने वंश का नाश कर रहे हो। मेरी बात जानते नहीं, मानते नहीं, कहते स्वामी जी समझते नहीं, बेसम मेरे को बताते हैं, आप समझ मेरे को बताओ फिर आपकी बात कहूंगा, मेरे समझ में आ जाएगी वो, मेरे आग्रह नहीं मेरी बात का, मेरी बात है ही नहीं, शास्त्रों की बात है, मेरी बात थोड़ी है, आप दूसरी बता दो तो मैं तो सत्य चीज का जिज्ञासु हूं, बताओ मैं जानूंगा।
सेवा करें न्याय करें, अपने को जाने प्रभु को सबने, तो मानव जीवन सबर नहीं है।
सेवा करे
न्याय की सेवा करी धर्म
है, गाय की न्याय की सेवा
करी, अपने को जान जाए,
अपने को
जान जाए, जान जाए कि मैं
अपने को जान जाए मैं शरीर नहीं हूँ,
अपने को जान जाए कि मैं
हाँ,
और भगवान को याद
करें, प्रभु को प्रेम करें,
भगवान को प्रेम करे,
हाँ हाँ,
तो कल्याण हो जाए क्या,
बिल्कुल हो ही जाएगा, हो जाएगा क्या, संदेह ही नहीं है, अपने को जान ले भगवान से प्रेम कर कल्याण के, और क्या होगा आप बताओ, कल्याण हो जाएगा, कल्याण नहीं हो तो क्या होगा आप बताओ, जानना अपने को है, करनी है सेवा, मांगना है ईश्वर को, तीन चीज खानना जानना मानना, तो शक्ति है मनुष्य में, जानने की शक्ति हो तो अपने स्वरूप को जानने में लगाओ, और करने की शक्ति हो सेवा करने में लगाओ, और मानने की शक्ति है तो ईश्वर को मानो, ये इनका स्वरूप योग है, निर्भर मुझे हो जाएगी तो हो गया भाई इस समय, और सुना लो आप सुना दो, भगत भागवत बड़े सज्जन आदमी, लाखों गायों के लिए प्रबंध किया उन्होंने, 36,000 गाय जिसको पानी पड़ा मुश्किल है उनको चार दिया कई महीनों तक, और अभी 2-4,000 गाय है,
3,000 गाय, मैं देख कहा था महाराज जी 3,000 गायों की ऐसा बढ़िया चारा दे रहे थे,
हाँ।
मैं निजमत देख कहा था
3,000 एक जगह एक दूसरे और
थी,
हाँ ऐसी गाय आज भी 36,000 गायों को चारा और जल करते थे, उनका शरीर शांत हो गया, तो उनका चलाया हुआ भाषा है, मेरे से पूछा कि रसोई बनाओ भाई, उनकी रसोई मत बनाओ, आज ही उनका सही साल था उनका नहीं, तो यहां भोजन करने वाले उस भाषा में भोजन करें, यहां रसोई बनाने का मना कर दिया है, अब ये बात यह नहीं की है, और कल से दूसरे भाइयों ने कहा कि हम बगीचे का पैसा न लगा करके हमारा पैसा लगा के ये पैसा चलाएंगे, तो कल से भी आप भोजन कर सकते हो आप, क्योंकि जो सूतक का नहीं खाते तो सूतक का अन्न उनके पैसों का बसा नहीं बनाए हुए, हम बनाएंगे हमारे पासों से, मैं पैसा